कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना।
तालियों के द्वार हम स्वागत करते हैं माननीय रक्षा मंत्री जी का, जो सर्वप्रथम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं हमारी दिवंगत दादी रतन मोहन जी को, जो हमारी मुख्य प्रशासिका थी।
मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ।
हम उनके साथ वहाँ पे खड़ी हैं दादी जी की सेक्रेटरी आदरणीय राजयोगिनी बी के लीला बहन जी और तारा बहन जी।
देखो पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना, आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो।
पुनः जोरदार तालियों से स्वागत हमारे माननीय मुख्य अतिथि भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए पधारे और आपने शोभा बढ़ाई इस सुंदर कार्यक्रम की। अब मैं निवेदन करूंगा कि जयंती दीदी उन्हें शॉल पहनाकर उनका सम्मान करें हम सबकी तरफ से। आदरणीय मुन्नी दीदी उन्हें बैज पहनाकर परमात्मा चिन्ह पहनाकर उनका सम्मान करेंगी। आप दोनों हमारी एडिशनल चीफ हैं।
औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो।
आदरणीय मुन्नी दीदी परमात्मा का स्मृति चिन्ह शिव बाबा शिव का बैच पहना रही हैं उनको। और अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर बी के मृत्युंजय भाई से कि वे मुख्य अतिथि को पगड़ी पहनाएंगे। जोरदार तालियां उन्हें इलायची मैला पहनाएंगे।
सर्वोदय सब सुनो,
इलायची मैला पहनाएंगे।
सहयोग करो
और ओम शांति भवन का मोमेंटो पेश करेंगे। ओम शांति मोमेंटो आदरणीय डॉक्टर मृत्युंजय भाई और जयंती दीदी पेश करेंगे इस मोमेंटो को।
शांति के
और अब मैं निवेदन करूंगा राजयोगिनी शुक्ला दीदी, कैप्टन इंडियन नेवी शिव सिंह, बीके शैलेंद्र नेशनल कोऑर्डिनेटर SSW से कि वे मुख्य अतिथि को SSW का मोमेंटो पेश करें। सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का मोमेंटो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अब मैं स्वागत गीत के लिए ब्रह्मा कुमार युग रतन भाई को आमंत्रित करता हूं, जो आज हमारे बीच में स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे, जिसके बहुत सुंदर बोल हैं, खातिर आप आए हमारे दूर से विश्व रक्षक प्रभु के घर में। तो उनकी परिचय में मैं कहना चाहूंगा कि आप एक बहुत कुशल गायक हैं, 12 विभिन्न भाषाओं में आपने गीत गाए हैं, बचपन से ही आप राज्यों का अभ्यास करते आए हैं और आपको अपनी इस कला के लिए फन के लिए कई पुरस्कार से नवाजा गया है। एक बार जोरदार तालियां युग रतन जी के लिए।
भारत छू रहा कितनी बुलंदियां, दुख अशांति से रहित हो ये भारत बगिया, आप संग मिलकर लाएंगे स्वर्णिम वो दुनिया, आध्यात्म को अपना कर अंतर मन का सुख पाए, आज स्वागत में झूमे हैं दसों दिशाएं, अभिनंदन में पर्वत भी है शीश नवाए। एकता और अगर विश्वास चाहिए, राजयोगी ध्वान जीवन को अपनाइए, आओ मिलकर स्वस्थ सभ्य समाज बनाएं, आज स्वागत में झूमे हैं दसों दिशाएं, अभिनंदन में पर्वत भी है शीश नवाए। आपसे इस देश को है बड़ी ही आशाएं, ECHS से MOU कर रहे हैं आज, सुरक्षा प्रभाग संग मिल इसका कर रहे आगाज, तंदुरुस्त जीवन वेटरन सौगात है पाए, आज स्वागत में झूमे हैं दसों दिशाएं, अभिनंदन में पर्वत भी है शीश नवाए, खातिर हमारे दूर से हैं आप जो आए, विश्व रक्षक प्रभु के घर आप जो आए, देश के रक्षकों की है महफिल सजाए, आज स्वागत में झूमे हैं दसों दिशाएं।
ओम शांति।
जोरदार तालियां, बहुत सुंदर गीत, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर जोरदार तालियां, ये बहुत बड़ा सम्मान है इनके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की 25 वर्षों की एक सुंदर यात्रा को वीडियो द्वारा देखेंगे कि कैसे एक नन्ना पौधा जो 2001 में लगाया था आज एक विशाल वट वृक्ष के रूप में पूरे देश की सुरक्षा बलों की सेवा कर रहा है। धन्यवाद।
किसी भी देश की सुरक्षा, समृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है उसके सुरक्षा बलों का। सुरक्षा चाहे आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा, पिछले 3-4 दशकों में तेजी से बढ़ते हुए आधुनिकता और टेक्नोलॉजी ने समाज और जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है और सुरक्षा कर्मियों की चुनौतियों को अनेक गुना बढ़ा दिया है। इसके अलावा समाज में गिरते हुए मूल्य, बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाएं और अपराध, बिखरते हुए परिवार, मीडिया का दबाव, जीवन में अनिश्चितता आदि न जाने कितनी चुनौतियां हैं। इन सब चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण के साथ साथ आत्म सशक्तिकरण अर्थात मानसिक शक्ति और मनोबल बढ़ाने की भी बहुत आवश्यकता है। इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का निर्माण 2001 में राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा भारत की मिलिट्री, पैरामिलिट्री एवं स्टेट पुलिस फोर्सेज के लिए किया गया ताकि अंतरिक्ष शक्ति के विकास द्वारा बढ़ते हुए तनाव के स्तर को कम किया जा सके। सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के कार्यक्रमों का संचालन माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज के अकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर द्वारा होता है। डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा डीजी सीआरपीएफ ने SSW का ऑफिशियल उद्घाटन सन 2002 में किया और इसमें पहली बार आर्मी और नेवी के अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ऑफिशियल ड्यूटी पर नॉमिनेट किया। सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुरक्षा बलों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव थिंकिंग, मैनेजिंग चैलेंजेस, स्लीप मैनेजमेंट, कामनेस इन क्राइसिस, मेडिटेशन और काउंसलिंग जैसे उपयोगी विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। 25 वर्ष पहले सुरक्षा कर्मियों की सेवा का जो यह नन्हा पौधा लगाया था आज एक विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा है, जहां इंडियन आर्मी में कमान से लेकर बटालियन तक हर स्तर पर सेल्फ एम्पावरमेंट के प्रोग्राम आयोजित किए गए।
आपकी संस्था के जो सदस्य हैं वो हमारी फौज में, हमारी सेना में लगातार आते रहते हैं और हमारे जवानों का भी इस तरह का मार्गदर्शन जो आप करते हैं वो करते आए हैं।
वहीं नेवी के तीनों ही कमांड्स के साथ साथ सभी मेजर एस्टेब्लिशमेंट्स में स्ट्रेस फ्री लिविंग प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया, जहां भारतीय वायुसेना के सदर्न कमांड, सेंट्रल कमांड और मेंटेनेंस कमांड के साथ अनेक विंग्स में कार्यक्रम रखे गए। वहीं कोस्ट गार्ड के भी सभी रीजनल हेडक्वार्टर्स में स्ट्रेस फ्री लिविंग प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया है। सन 2014 में सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के द्वारा विशेष भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए व्यापक स्तर पर सेवाएं शुरू की गयी, जब BSF हेडक्वार्टर्स ने अपने सभी फ्रंटियर्स, सेक्टर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स में 2 दिवसीय स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम कराने का आमंत्रण दिया। इसी तरह विभिन्न फोर्स हेडक्वार्टर्स के निर्देशानुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के सभी सेक्टरों में, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के देश भर में फैले सभी ट्रेनिंग सेंटर्स, एयरपोर्ट सेक्टर्स और मेजर ऑपरेशनल यूनिट्स में, इंडो तिब्बती सीमा पुलिस बल ITBP की अकेडमी के साथ साथ सभी फ्रंटियर्स में, सशस्त्र सीमा बल SSB के सभी फ्रंटियर्स में, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF के देश भर में स्थित सभी 16 बटालियंस में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के सभी हब्स में स्व सशक्तिकरण कार्यक्रमों का सफल आयोजन हुआ। इसके अलावा असम राइफल्स, बॉर्डर रोड्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, होम गार्ड आदि अन्य फोर्सेज में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारतीय राज्य पुलिस बलों के लिए भी अलग अलग राज्यों में नियमित रूप से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सेवाओं के इस अनोखे सफर में एक समय ऐसा था जब हर दूसरे दिन देश के किसी न किसी कोने में किसी न किसी फोर्स के लिए SSW की फैकल्टीज दृढ़ता और सेवा भाव से लगातार सेवा में व्यस्त थी। उनकी निष्ठा, प्रतिबद्धता और निस्वार्थता इस बात से स्पष्ट होती है कि इन पूरे कार्यक्रमों को निशुल्क किया गया। फील्ड फॉर्मेशंस के साथ साथ वर्ष में एक बार 4 दिवसीय रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए माउंट आबू स्थित अकेडमी में सुरक्षा बलों को आमंत्रित किया जाता है। अनुभव और प्रेरणा युक्त इन कार्यक्रमों के सुंदर अनुभवों की अमित छा प्रतिभागी अपने साथ ले जाते हैं।
इन द लास्ट 4 डेज, दैट इज 96 आवर्स, आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड, दो आई एम द सेम मैन इन फिजिकल फॉर्म।
तो मेरा ख्याल है एक सबसे बड़ा टेक अवे यहाँ से ये होगा कि प्लीज ट्रीट योर जूनियर्स विद लॉट ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट।
पहले दिन से जब 7 वर्च्यूज सिखाए गए लाइफ के, टीम का मीनिंग सिखाया गया, मेडिटेशन सिखाई गई, शब्द नहीं है मेरे मुंह में बयान करने के लिए कि हम किस एम से आ रहे हैं और आज किस खुशी से जा रहे हैं।
एंड द वे दे हैव टॉट पीपल, आई फील नॉलेज शुड बी इम्पार्टेड टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री।
और मुझे इससे इतना फायदा हुआ कि मैं अपना कार्य और अच्छी तरह से कर सका और ज्यादा कार्य कर सका।
देश में स्थित अन्य रिट्रीट सेंटरों जैसे दिल्ली, हैदराबाद और रायपुर में भी 2 दिनों के रेजिडेंशियल प्रोग्राम सुरक्षा बलों की आवश्यकता के अनुरूप आयोजित किए जाते हैं। कोरोना काल में भी इन वीरों को आंतरिक रूप से सशक्त करने के लिए विशेष ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 2021 से भारत की आजादी के अमृत महोत्सव की खुशी में SSW ने राष्ट्र के वीर जवानों के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रमों द्वारा अधिक से अधिक सुरक्षा कर्मियों की सेवा का लक्ष्य रखा गया। इसके प्रथम चरण में 6500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 20 सुरक्षा संगठनों में 168 स्वशक्तिकरण कार्यक्रम द्वारा 20,000 से अधिक सैन्य बलों के अधिकारियों और जवानों को लाभ प्राप्त हुआ। तत्पश्चात का कैंपेन के 5 चरण द्वारा तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट आदि के सुरक्षा बलों को भी लाभ प्राप्त हुआ। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के कमांड स्तर के कार्यक्रमों का भी आयोजन संभव हुआ। अकेडमी में आगमन होता रहता है, लेकिन 3 जनवरी 2023 को SSW के लिए एक अत्यधिक विशिष्ट दिन रहा, जब स्वयं राष्ट्र की सुप्रीम कमांडर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ज्ञान सरोवर पहुंची। उन्हें SSW द्वारा सुरक्षा बलों की सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।
इस सिल्वर जुबली में SSW ने एक नया अभियान सुरक्षा बलों की सेवा में समर्पित किया है, स्वशक्तिकरण से राष्ट्र शक्तिकरण। हमें गर्व है कि हमारे साथ इस यात्रा में मार्गदर्शन और प्रेरणा देने हेतु माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अब समय है कि हम नए जोश और ऊर्जा के साथ स्वयं को फिर से समर्पित करें। जय हिंद, जय भारत।
सेवाओं को सलाम करते हैं। अब हम हमारी एडिशनल चीफ ऑफ द ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी से उनका उद्बोधन सुनेंगे, जिसमें वो हमें आशीर्वाद भी देंगी, आशीर्वचन भी देंगी। आप हमारी इस ब्रह्मा कुमारी की एडिशनल चीफ हैं, आप साथ साथ डायरेक्टर भी हैं स्पिरिचुअल सर्विसेज यूरोप की। बचपन से ही, बालिकाल से ही आप राज्यों का अभ्यास करती आई हैं। आप एक बहुत कुशल वक्ता हैं। भारतवर्ष और विश्व में आपने पूर्ण रूप से काफी स्थानों पर भ्रमण किया है। और सबसे बड़ी बात इनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आप अध्यात्म की जीती जागती दिव्य मूर्त हैं। धन्यवाद।
ओम शांति। सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस श्री रामनाथ सिंह जी, हमारे विशेष अतिथियगण और हमारे विशेष जो हमारे देश के वीर रक्षा करने वाले सब यहाँ जो हाजिर हैं, आप सभी को नमस्कार। और पहले तो मैं कहेंगी कि जो हमारी सुरक्षा करने वाले जो यहाँ हाजिर हैं, उन सबको हमारा नमन। आपकी जो यूनिफॉर्म है वो सिर्फ स्टील की नहीं है, परंतु उसके पीछे आपने जो त्याग की जीवन और जो अपने आत्मविश्वास की जीवन और जो अनुशासन की जीवन आपने बिताई है और उस पर आपने कमिटमेंट दिया है, उस आधार पर हम यहाँ आज बैठे हैं और हमारी रक्षा हर प्रकार से हो रही है। परंतु ये भी मैं मानती हूँ कि आपका न सिर्फ ये एक्सटर्नल बातों की शक्ति है, परंतु आज आप यहाँ शांतिवन में आए हैं, जहाँ इस विशेष पावन धरनी पर हम मानते हैं कि आत्म शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। और हम ये देखते हैं कि जहाँ पर शांति है वहाँ आत्मविश्वास भी बढ़ता है, अपनी शक्ति अनेक प्रकार के जो आंतरिक है वो भी बढ़ सकती। आत्मशक्ति क्या है? हम मानते हैं कि हर एक के अंदर एक दिव्य ज्योत है, और जब हम उस दिव्य ज्योत को पहचानते हैं तो आत्मा की जो जागृति आती है उसमें अनेक प्रकार के हमारे जीवन के बहुत सुंदर प्राप्तियां होती है। उसमें हर प्रकार से हम डर को विदाई दे सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ सकता, आत्मबल बढ़ सकता, और साथ ही साथ हम अपने मन के ऊपर अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारी अनेक प्रकार की भावनाएं हैं अंदर, उनों को भी हम अच्छी तरह से नियंत्रित करके बहुत सुंदर अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। राजयोग का जो अभ्यास है वो कोई सिर्फ धर्म या कोई क्रिया का अभ्यास नहीं है, परंतु ये ऐसा अभ्यास है जिसमें हमारी निर्णय शक्ति बढ़ती है, जिस आधार पर जो हम कार्य करते हैं उसका जो आउटकम होता है, रिजल्ट होता है, वो सदा पॉजिटिव ही होता, क्योंकि राजयोग के अभ्यास से जो हम अपने मन में पॉजिटिव विचार लाते हैं और ऊपर वाले से शक्ति अपने में भरते हैं, उससे हमारे जीवन का परिवर्तन तो होता ही है बहुत अच्छी तरह से, सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ प्रोग्रेस तो होती ही है। परंतु जो भी हम कार्य करते हैं, सर्व के साथ जो हम संबंध रखते हैं, उसमें भी अनेक प्रकार की प्राप्तियां होती हैं। और बाकी मैं कहेंगी कि ये न सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट की या सेल्फ एम्पावरमेंट की बात है, परंतु यदि हम सरकार के हिसाब से भी देखेंगे तो आप सोचें, जहां पर सत्यता आधार है, जहां पर सेवा भावना है, जहां पर शांति एक स्वधर्म है, उस आधार पर जो भी बातें पॉलिसीज के रूप में आती है, उस सत्यता के आधार पर होने कारण वो बहुत ही देश की भी प्रगति होती, उसकी भी बहुत सुंदर प्रोग्रेस हो सकती। तो हम मानते हैं कि ये धरणी भारत की धरणी, ऋषि मुनियों की धरणी है, और जो आप सेवाएं कर रहे हैं वो न सिर्फ हमारी सीमा को, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, परंतु आप भारत की आत्मा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मैं जानती हूं कि सरकार के लिए भी यदि ये भावना है कि हम कुछ अच्छा कार्य करें देश के लिए, उसमें जब वो ऊपर से शक्ति होती, निर्णय शक्ति हमारी सही होती, तो हर कार्य हमारा सफल भी होता और सर्व के लिए उसमें कुछ कल्याण भी समाया हुआ होता। और ये जो हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया है भारत के अंदर, हम ये मानते हैं कि भविष्य भारत जो पहले कुछ समय सदियों पहले हम ये मानते थे कि भारत एक विश्व गुरु था, परंतु यदि आज हम उस सत्यता को स्वीकार करके आज हम अपना एम्पावरमेंट करते हैं स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, तो देश अवश्य ही ऐसे ही फिर से विश्व गुरु बन सकता। हम ये भी मानते हैं कि जो आज का पैरामीटर्स बताते हैं, चाहे आर्थिक हिसाब से, चाहे आर्ममेंट्स के हिसाब से, कोई भी बात के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से हम उसको शक्ति मानते हैं, वो तो एक एक्सटर्नल बात है और उसमें कई बातें नीचे ऊपर भी हो सकती। परंतु जिस देश में हर एक को ध्यान का महत्व है, और यदि उस ध्यान पर वो कुछ समय निकाल करके वो अभ्यास करते हैं, इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस मेडिटेशन, तो उससे क्या होता कि जो बातें होती हैं पॉलिसीज के हिसाब से सभी उसमें शामिल भी होती हैं, और हर नागरिक को अपने जीवन डिग्निटी से जीने की भी कला आ जाती। तो भारत की जो पुरातन सभ्यताएं हैं, यदि आज हम उन बातों को सामने रख करके आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि जो ब्रह्मा कुमारी सेवाएं कर रही हैं उससे कुछ सहयोग प्राप्त हो सकता। आज हम आपको बड़े दिल से ये बात कहने चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी सेवा के लिए समर्पित अपनी जीवन दे चुके हैं और हम चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके ये इंटरनल फोकस, अटेंशन और खास करके तनाव मुक्त जीवन, जिसके अंदर शांति की शक्ति हो, वो सब के लिए हम लोग वर्कशॉप्स भी करते हैं, ट्रेनिंग्स भी देते हैं और जहाँ पर भी आपका निमंत्रण होगा हम जरूर वहाँ पर अपनी सेवादान दे सकते हैं। और मैं चाहेंगी कि अब कुछ चंद घड़ियों के लिए ये मेडिटेशन क्या है उसका थोड़ा हम अनुभव करें। तो जैसे ही आप इतना प्रेम से, धीरज से, शांति से सब बैठे हैं, ऐसे ही बैठे रहें, क्योंकि राजयोग का अभ्यास है मानसिक अभ्यास। तो कहाँ पर भी आप होंगे आप ये सहज रीति से उसको धारण करके आगे चल सकते। उसमें मैं जो बातें बताती जाएंगी, मेरा निमंत्रण है कि आप उन बातों पर आप फॉलो करते जाना अपनी मानसिक स्थिति में। और मुझे लगता है कि आपको पता चलेगा कि एक तो ये कितना सहज है, परंतु साथ साथ उसे कितना सहज रीति से आत्मिक बल भी बढ़ता है और शांति की भी अनुभूति होती। शांति में बैठे इस श्रेष्ठ वातावरण में श्रेष्ठ संकल्प करते कि मैं हूं एक ज्योति स्वरूप आत्मा, प्रकृति के बीच में निवास करने वाली। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। ये सोचते ही संकल्प जो पहले तेज चलते थे अभी धीरे चलने लगते और ये रियलिटी में अनुभव होता कि मैं हूं शांत स्वरूप आत्मा। सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में मौजूद है, केवल मुझे ये स्मृति में लाना है कि मैं ये ज्योति स्वरूप हूं। इस तन की भी बहुत ही कीमत है, परंतु चंद घड़ियों के लिए मैं मन बुद्धि को एकाग्र करती हूं और आत्मा की आंतरिक शक्ति की जागृति होती जाती। शांत स्वरूप, सत्य स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ये मेरे आदि गुण है। खुद को भूल गए तो ये गुणों से दूर चले गए और अब जैसे ही स्वयं की स्मृति आती सर्व शक्तियां सर्व गुण उस निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होते। न केवल मुझे प्राप्त होते, परंतु ये शांति की शक्ति सतब्र फैलती जा रही और सब आत्माओं को भी ये शांति के किरणें पहुंचते जा रहे। भारत में शांति, विश्व में शांति, ये कोई स्वप्न नहीं है, परंतु जैसे ही हम उस निराकार ज्योति स्वरूप को याद करते और सर्वशक्तिवान से वो शांति की शक्ति फैलती जा रही, ये अपना स्वप्न ये फिर से भारत का स्वर्णिम युग आ सके, सब हम मिलकर के ऐसे योग लगाएं, तो ये स्वप्न भी बहुत जल्द साकार हो ही जाएगा। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद अति आदरणीय सह मुख्य प्रशासिका जयंती दीदी को उनके सुंदर संबोधन के लिए। अब भारतीय संस्कृति की सर्वोच्च परंपरा के अनुरूप इस शुभ कार्यक्रम की शुरुआत हम द्वीप प्रज्वलन द्वारा करेंगे। आज हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से तीन सुंदर कार्यक्रमों को आगाज करेंगे। मैं निवेदन करूंगा मंच पर बैठे सभी महानुभावों से कि वे द्वीप प्रज्वलन के लिए प्रस्थान करें। आज का ये द्वीप प्रज्वलन साक्षी होगा सर्वप्रथम राष्ट्रव्यापी महाअभियान जो सुरक्षा बलों के लिए है, विषय स्वशक्तिकरण से राष्ट्र शक्तिकरण। दूसरा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग SSW ECS और ECSS के बीच, और तीसरा रमा कुमारी की वार्षिक थीम 2025-26 विश्व एकता एवं विश्वास हेतु ध्यान के लिए एक सुंदर आगाज। हम सभी जोरदार तालियों से इस कैंडल लाइटिंग
जग जियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए, बदलने वाला राजयोग का मार्ग।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम देखेंगे उस प्यारी घटना को, उस सुंदर प्रोग्राम को जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आगाज होगा, जिसमें दस्तावेज बदले जाएंगे आपस में। तो मैं निवेदन करता हूं, मंच पे आगाज करता हूं आदरणीय मेजर जनरल मनोज नटराजन शौर्य चक्र विशिष्ट सेवा मेडल एवं उनकी टीम का कि वे मंच पर पधारें। टीम के सदस्य हैं ग्रुप कैप्टन विजय भैरव, जॉइंट डायरेक्टर रीजनल सेंटर ECSS गांधीनगर, और डॉक्टर पीपी शर्मा ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आपसे निवेदन है कि आप मंच की तरफ प्रस्थान करें। दूसरी तरफ हमारे वर्मा कुमार की तरफ से SSW की तरफ से शुक्ला दीदी वाइस चेयरमैन SSW, BK शैलेंद्र नेशनल कोऑर्डिनेटर, और BK सारिका हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर दिल्ली। एक बार जोरदार तालियों से ये MOU की जो इसके तहत अब से अगले दो वर्ष तक जितने भी सेवानिवृत्त हमारे फौजी हैं, वेटरन्स हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनें, उनको राजयोग द्वारा उनका आत्म सशक्तिकरण करने में मदद करेगी, ताकि उनकी जो निर्भरता है दवाइयों में वो कम होगी और ध्यान योग से वो स्वयं स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। ये पहली बार ऐसी पहल हो रही है जिसके लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। अब जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था वो हमारे सामने आ चुकी है। हमारे बीच भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, को अब हम सुनेंगे। इससे पूर्व वो कुछ बोले, मैं चाहूंगा कि संक्षेप में उनके बारे में मैं कुछ बातें बताऊं। आपका 51 वर्षों का एक सुंदर लंबा सफल राजनीतिक जीवन रहा है, जिसके लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। आपने बहुत महत्वपूर्ण पदों पर देश को अपनी सेवाएं दी हैं, और गृहमंत्री के रूप में और अब रक्षा मंत्री के रूप में आपके नेतृत्व में देश की सुरक्षा बल बहुत मजबूत, आत्मनिर्भर और सशक्त हुए हैं। पुनः जोरदार तालियां। मुझे खुशी होती है कि ब्रह्मा कुमारीज की जो लक्ष्य है, जिस गोल के साथ ये संस्था आगे बढ़ रही है, ये आध्यात्मिक संस्था, ठीक उसी प्रकार हमारे रक्षा मंत्री का भी एक लक्ष्य है, और वो है भारत को विश्व गुरु अर्थात वर्ल्ड लीडर बनाना। इस संस्था में भी आपने देखा कैसे परमपिता श्री परमात्मा ने नारी शक्ति को आगे रखा, ठीक उसी प्रकार से हमारे रक्षा मंत्री का भी ये लक्ष्य रहा है कि हमेशा नारियों को आगे रखना, महिलाओं को आगे रखना। उन्होंने सुरक्षा बलों में भी एज ए गृहमंत्री और अब एज ए रक्षा मंत्री महिलाओं के फेवर में, उनके कल्याण में बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए। पुनः जोरदार तालियां। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे रक्षा मंत्री भी स्वर्णिम भारत के सुंदर लक्ष्य के साथ भारत को आत्मनिर्भर, मजबूत और संपन्न बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ श्री राजनाथ सिंह जी।
क्षमा कीजिएगा, सती जी ने मेरी जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर दी है। जो देखने में और साथ ही साथ जनता की नजर में ठीक ठाक नहीं होता है, और विशेष रूप से देखने में तो ठीक ठाक न हो तो उसको ठीक ठाक दिखने के लिए बहुत सारे अलंकारों से अलंकृत किया जाता है। आपने देखा होगा सोने चांदी के आभूषण पहनाए जाते हैं, डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग, यह सब सारी की जाती है। लेकिन सच्चाई है और जीवन की हकीकत है कि मनुष्य अपने जीवन में अलंकारों से अलंकृत होकर कभी विभूषित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के कारण, अपने डीड्स के कारण ही वह विभूषित हो सकता है। और इस स्थान का जहां तक प्रश्न है, इसके पहले भी मैं एक बार यहां आ चुका हूं, अद्भुत वाइब्रेशन है। अनइमेजिनेबल, कल्पना से परे। मैं बैठे बैठे देख रहा था, कहीं मंदिर नहीं है, कहीं गिरजाघर नहीं है, कहीं मस्जिद नहीं है, फिर भी ऐसी वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन को हम क्या नाम दें? मेरे पास, मैं शब्दों को तलाशने लगा लेकिन शब्द नहीं मिले, तो मैंने कहा कि यह और कोई दूसरा वाइब्रेशन नहीं है, यह स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, या आध्यात्मिक तरंगें यहां पर तैर रही हैं। मैं देख रहा हूं हमारे यहां मंत्री बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, चेयरमैन बैठे हैं। शायद यदि किसी राजनीतिक पार्टी की कोई सभा होती तो लोग कहते मंत्री जी हैं उनको मंच पर बुला लो, सांसद जी हैं मंच पर बुला लो। लेकिन निर्विकार भाव से सभी के साथ मिलजुल कर वह नीचे बैठे हुए। इस स्थान का करिश्मा है कि इस प्रकार के भाव चाहे कोई कितनी भी ऊंची कुर्सी पर क्यों न बैठा हुआ हो उसके अंदर पैदा होते हैं। और यहां आते ही कोई हर व्यक्ति मुझे लगता है कि अहंकार शून्य हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि अहंकार के हा पर लगा हुआ यह पॉइंट कितना डेंजरस होता है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में भी आपने महसूस किया होगा कि जो मंत्री हो अधिकारी हो कोई हो जो अहंकारी होता है भले ही वह सीना तान कर चलने की कोशिश करे लेकिन लोगों की नजरों में उसका सम्मान नहीं होता है। यदि किसी मैथमेटिक्स के हिसाब से इसे समझाना हो तो मैं कह सकता हूं जैसे कोई भी नंबर हो 1, 2, 3, 4 किसी नंबर के पहले अहंकार के हा के ऊपर लगा हुआ पॉइंट आप लगा दीजिए उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। वन के पहले अहंकार का पॉइंट लगा दीजिए उसकी वैल्यू घटकर 1/10 हो जाएगी, 1 नहीं रह जाएगी। लोग कहते हैं कि साहब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी मंदिर नहीं जाते पूजा नहीं करते मस्जिद नहीं जाते इबादत करते हैं फिर भी बड़े मन के लोग होते हैं। मैंने कहा कि स्पिरिचुअल होने के लिए आवश्यक नहीं है, आस्था सबके प्रति होनी चाहिए हर स्थान के प्रति हर आध्यात्मिक स्थली के प्रति, इसमें कहीं दो मत नहीं है लेकिन आवश्यक नहीं है कि जाए। हमारा यह मन जो परमात्मा ने दिया है अब इस मन को कई इसके नामनक्लेचर्स हो सकते हैं लेकिन मैं यह मानता हूं कि मनुष्य का मन जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है मनुष्य उसी रेशियो में स्पिरिचुअल हाइट आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता चला जाता है। मैं कभी कभी इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में मैं कहता हूं क्योंकि यहां सारे पढ़े लिखे लोग फोर्स के लोग हैं कम से कम हाई स्कूल तक मैथमेटिक्स सबने पढ़ी होगी। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका मन यह सर्किल है तो सर्किल या मन मान लीजिए मन कभी सर्किल नहीं होता, मन का कोई आकार नहीं है, मन का कोई प्रकार नहीं है, आत्मा की कोई आकार नहीं है, आत्मा का कोई प्रकार नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है, मान लीजिए। लेट अस कंसीडर दैट योर आत्मा इज ए सर्किल, आपका आपकी आत्मा यह सर्किल है एक वृत्त है। तो सर्किल का सर्कमफेरेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे माने मन की सर्किल का सर्कमफेरेंस यानी उसकी जो परिधि होती है सर्किल की जो परिधि होती है चारों तरफ की जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसी रेशियो में उसी अनुपात में आपको सुख आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी। और आपने कहा कि सुख की बात आपने कर दी आनंद की बात कर दी लेकिन परमानंद भी तो होता है। परमानंद की बात मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया, परमानंद की कोई सीमा नहीं होती है। परमानंद जिसको प्राप्त हो गया उसको तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, पूरी सृष्टि का संचालन करने वाली जो सत्ता है उसकी प्राप्ति हो गई। अद्भुत वाइब्रेशन है। मैं तो कहता हूं कि सज्जन लोगों की बात तो छोड़िए, शायद इस स्थान पर कोई बहुत शातिर भी आ जाए और हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें जो यहां पर मौजूद हैं, इन लोगों का सानिध्य मिल जाए, इन लोगों की बातें सुन ले, वो भी सन्यासी बन जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे प्रसन्नता हुई है। और मुझे बताया गया पिछले चार दिनों से यह कार्यक्रम चल रहा है और इसका आज समापन हो रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस कार्यक्रम का कभी समापन होने वाला नहीं है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया है और यहां आप अपने राजयोग साधना के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगों को आपने फैलाया है, उसे मैं सहज ही अनुभव कर सकता हूं। और इस मंच से पूज्या दीदी रतन मोहिनी जी और सारी हमारी दीदियां जो बैठी हैं उन वो मैं इस मंच से पूज्या दीदी रतन मोहिनी जी जिनकी जिनके अभी मैंने पुष्पांजलि दी है, उनकी स्मृति को नमन करता हूं। हृदय की गहराइयों से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ब्रह्म कुमारी के प्रमुख के रूप में उन्होंने संस्थान की और देशवासियों की, देवी और सज्जनों, बहुत ही सेवा की है और इसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। इसके पहले जब मैं गृह मंत्री रहते हुए यहां आया था तो उनका सानिध्य और उनका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ था। और आप जानते हैं कि ब्रह्म कुमारी ने अपनी स्थापना के समय से ही लेकर आज तक निःस्वार्थ भाव से पूरी मानवता के आध्यात्मिक विकास और आत्मिक बल बढ़ाने के लिए काम किया है। और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 से भी अधिक ज्यादा देशों में आप लगातार अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आप सब ने भारतीय संस्कृति और प्रजापिता ब्रह्म बाबा के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया है, उसके लिए यह भारत कभी ब्रह्म कुमारी को भूलेगा नहीं। जो भी एक बार आपके सानिध्य में आ गया, जो भी ऐसे स्थानों पर पहुंच गया, वह उस इन स्थानों की स्पिरिचुअल वाइब्रेशन के ग्रिप में आ जाएगा, बाहर निकल ही नहीं सकता। यहां आने के लिए तो खुले हुए हैं दरवाजे, जाने के लिए नहीं है। माउंट आबू की चोटी पर स्थित ब्रह्म कुमारी जी का यह सुंदर सा केंद्र वह स्थान है जहां अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं की धारणा यह केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रह जाती है बल्कि वह मानव की अनुभूति तक पहुंचती है। मानव उसका एहसास करता है, अनुभूति करता है। देवी और सज्जनों, आपने हमारी आर्म फोर्सेज और सिक्योरिटी पर्सनल, क्योंकि मैं गृहमंत्री भी रह चुका हूं और रक्षा मंत्री भी हूं इस समय, अब हमसे पूछिए तो गृहमंत्री रक्षा मंत्री कहते हुए मुझे बहुत संकोच हो रहा है। आप कहेंगे क्यों संकोच हो रहा है? संकोच इसलिए हो रहा है, हे परमात्मा, इसके कारण मेरे अंदर कहीं अहंकार न पैदा हो। लेकिन दायित्व तो है, एक सिस्टम है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा कर दी। हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनके साथ भी मिलजुल कर काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और आज हमारे जो आर्मी पर्सनल हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनके ऑफिसर्स और पर्सनल के साथ भी मिलजुल कर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए उनकी इनर वेलबींग और माइंडफुलनेस के लिए जो आपने यह सेशन आयोजित किया है उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने एक ऐसे अभियान का प्रारंभ किया है जो न केवल राष्ट्र की रक्षा नींव को और मजबूत करेगा बल्कि सारे सूरवीर, यही नहीं पूरे भारत के जो बैठे हैं, उनको आत्मिक शक्ति देगा और पूरे समर्थन से देश की सीमाओं को सुरक्षित वह रखते हैं और मैं मानता हूं एक प्रकार से उनका यहां आने पर आत्म रूपांतरण होगा। और मैं चाहता हूं कि आना चाहिए, इच्छा यह है, कितना यह हो पाएगा यह परमात्मा जानता है। मैं समझता हूं कि आत्म रूपांतरण बीज है और राष्ट्रीय रूपांतरण उसका फल है। आइए, आत्म रूपांतरण यहां होगा, राष्ट्रीय रूपांतरण होकर रहेगा। ऐसे में आत्म रूपांतरण करने का यह अभियान मैं मानता हूं ध्यान, योग, सकारात्मक चिंतन और आत्म संवाद के माध्यम से हमारे वीर जवानों को मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक बल देगा। मैं इसके लिए शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब मैं इस मंच पर आ रहा था तो और रास्ते में भी कुछ जगह होर्डिंग्स लगी हुई थी, मैंने देखा इस कार्यक्रम की थीम क्या है। मुझे पहले नहीं मालूम था इस कार्यक्रम की थीम क्या है, सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू इनर अवेकनिंग। यह थीम अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है। पूरी दुनिया में जिस प्रकार की स्थितियां अभी हैं उसे देखते हुए यह थीम और भी रेलेवेंट हो जाती है, और भी प्रासंगिक हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश यह करूंगा कि अपनी बातचीत को इसी के इर्द गिर्द सीमित रखूं। साथियों, जहां तक भारत का राष्ट्र का प्रश्न है, राष्ट्र के रूप में आज भारत चारों ओर से सुरक्षित है। और सुरक्षित यदि है तो हमारे कारण सुरक्षित नहीं है, यह जब बैठे हुए लोग हैं इनके कारण भारत सुरक्षित है। दुनिया भर में तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद आज भारत प्रगति कर रहा है। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दुनिया स्वीकार करती है कि भारत प्रगति कर रहा है। आज के 10 वर्षों पहले दुनिया के देशों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कोई जाकर बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत का स्टेचर, भारत का कद इतना बड़ा हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। लोग कहते थे गरीबों का देश है, भिखारियों का देश है, करिश्मा हुआ है। जो भारत 2014 के पहले 11वें स्थान पर था वो जंप लेकर इकॉनमी की साइज, धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया। मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल फर्म्स, फाइनेंशियल फर्म्स, हाईली रिप्यूटेड फाइनेंशियल फर्म्स इस समय दावा कर रही हैं कि अब भारत को कोई रोक नहीं सकता है। दो वर्ष के बाद इकॉनमी की साइज को लेकर, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। और मुझे लगता है कि शायद यह परमात्मा का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है, आप जैसे विदुषियों का आशीर्वाद प्राप्त है कि भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकॉनमी की साइज के मामले में 2 साल के बाद तो दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में पहुंचेगा। लेकिन मुझे लगता है आजादी के 100 वर्ष पूरा होते होते 2047 तक हमारा भारत कहां जाएगा, मैं कहूंगा आप लोग, हो सकता है कभी कुछ चूक रह जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि परमात्मा 2047 तक ही हमको टॉप पर पहुंचा दे भारत। और यह सब जो कुछ भी हो रहा है इसलिए कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जिस समर्पण के भाव के साथ लगे हैं, बाहर रहकर किसी को उसका एहसास नहीं होगा, सीमाओं पर जाकर मैं देखता हूं। महीनों गुजर जाते हैं परिवार के लोगों से कोई संपर्क नहीं होता। रहा ऐसे सारे जाबाज जितने भी हमारे सैनिक और सुरक्षाकर्मी हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं, क्यों इसलिए अभिनंदन करता हूं कि उन्हीं सभी लोगों की वजह से ही आज भारत के लोग चैन की सांस ले पा रहे हैं। साथियों, अगर आप ऊपरी तौर पर देखें तो सैनिकों को सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जोड़कर देखा जाता है, भाई सैनिक हैं तो राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सैनिक को शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, हट्टा कट्टा होना चाहिए, चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। निश्चित रूप से एक सैनिक के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ यह आवश्यक है, क्योंकि सैनिक को कठिन माहौल में रहना पड़ता है। यात्रा देखिए सीमाओं के ऊपर, मैं तो यात्रा देखता हूं कभी सियाचिन की ऊंचाई पर, यानी तीन तीन चार चार महीने जवान जो तैनात हो जाते हैं, हम लोगों की आधे घंटे में हालत बिगड़ती है, भागो यहां से हेलीकॉप्टर से, वहां समय गुजारते हैं, हर चीज फ्रीज्ड है, वहां जहां रहते हैं वह भी फ्रीज्ड है, खाना पीना सब फ्रीज्ड। हमारे सुरक्षा के जवानों को, आर्म फोर्सेस को अलग अलग तरीके से इक्विपमेंट को भी हैंडल करना पड़ता है। इन सारी चीजों को देखते हुए फिजिकल स्ट्रेंथ का होना उसके लिए आवश्यक है, इसलिए हमारी आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग भी बड़े स्तर पर फिजिकल स्ट्रेंथ पर ज्यादा ध्यान देती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि एक सैनिक के लिए सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। एक सैनिक के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी आवश्यक है, और वह मेंटल स्ट्रेंथ हम नहीं देंगे, वह मेंटल स्ट्रेंथ आप लोग देंगे, आपसे ही मिलेगी। और यहां पर मेरे समक्ष इतने सारे आर्म फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान और अफसर बैठे हैं, किसी भी जवान के यदि डेली रूटीन के बारे में यदि कोई भी बैठा हुआ यहां का व्यक्ति नहीं देश का कोई भी व्यक्ति जाने तो उसे ताजुब होगा। एक सैनिक अपने घर परिवार से दूर रहता है, मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीएपीएफ के भी जवानों को देखा और अपने गांव से दूर रहता है, अपने समाज के लोगों से वह दूर रहता है। इसके अलावा हमारे सैनिकों को हिमालय की ऊंचाइयों पर भी रहना पड़ता है, समुद्र की गहराइयों में भी रहना पड़ता है, रेतीले मैदानों से लेकर घने जंगलों तक में भी रहना पड़ता है। इतनी मुश्किल परिस्थितियों में हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, और ये सारी कठिनाइयां सारी मुश्किलें सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के आधार पर झेली नहीं जा सकती। देवियों सज्जनों, एक सैनिक के अंदर सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर खड़े रहने की यह ऊर्जा या एनर्जी कहां से आती है? थारू के मरुस्थल में 50 डिग्री सेल्सियस से भी तापमान सहने की शक्ति है। एक हमारे सैनिक को कहां से आती है? समुद्र के भीतर कई महीनों तक पनडुब्बी में पड़े रहने वाले हमारे सैनिक के पास समुद्र के दबाव को सहन करने की क्षमता कहां से आती है? साथियों, हमारे सैनिकों के पास यह सारी ऊर्जा, यह प्रेरणा, यह शक्ति उनके अंतर मन से आती है, सरकार के द्वारा नहीं आती है, उनके अंतर मन से आती है, और उनके भीतर की रोशनी उन्हें ऊर्जा देती है और उनकी आत्मा उन्हें बल प्रदान करती है। हमारे सैनिक जो दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो उनके शरीर और दिमाग दोनों की परीक्षा लेती रहती है। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लंबे समय तक तनाव, अनिश्चितता और कठिन परिस्थितियों में काम करने के कारण सैनिकों का मानसिक स्वास्थ्य भी किसी न किसी हद तक प्रभावित भी होता है। ऐसे में ब्रह्म कुमारीज का सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आगे आना निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम है, और मैं इसके लिए शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप अपने आसपास के वातावरण को देखिए, एक आम आदमी के जीवन का भी मूल्यांकन करिए, आकलन करिए। एक आम आदमी वैसे तो कई सारे लोगों के बीच रहता है और अपने घर परिवार के बीच में रहता है, उसका एक समाज होता है, रोज कई नए लोग मिला करते हैं, इसके बावजूद भी उसे अकेलेपन और तनाव की समस्या से आपने देखा होगा लोगों को गुजरना पड़ता है। तो फिर हमारे सैनिकों पर, हमारे सुरक्षा के जवानों पर क्या गुजरती होगी जो घर परिवार से दूर रहकर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं? और सैनिक ही क्यों, आप सामान्य लोगों को देखें, उनका ऑब्जर्वेशन करें। और आप सब जानते हैं यह आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, AI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग, पल पल की सूचनाएं हमारे पास आती हैं, हमें सेकंड पे पता चलता है कि अमेरिका में क्या चल रहा है, हमें मालूम है कि यूक्रेन में क्या चल रहा है, हमें मालूम है कि रूस में क्या चल रहा है, लेकिन हमारे भीतर क्या चल रहा है यह हमें नहीं मालूम होता है। देवी और सज्जनों, हम पूरी दुनिया की खबर रखते हैं लेकिन अपनी खबर नहीं रखते हैं, हमारे सैनिक भी पूरी दुनिया की चीजें देखते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं झांकते हैं। हम आप सभी धीरे धीरे इंसान का बाहरी दुनिया से कनेक्शन यह भले जुड़ जाता है लेकिन खुद से जो कनेक्शन होना चाहिए खुद का कनेक्शन वह टूट जाता है। शायद यही कारण है कि इन सारी चीजों के बावजूद भी आम आदमी को अकेलेपन का और तनाव की समस्या का करना पड़ता है। आप हॉस्पिटल्स में साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट जाकर देखिए, लंबी लंबी लाइनें वहां आपको देखने को मिलेंगी। दुनिया भर में अनेक लोग सामान्य जीवन जीने के लिए परेशान हैं, इसलिए इस समय की जरूरत है कि चाहे सामान्य नागरिक हो या फिर हमारे सैनिक हो, उनके पास आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए जो उन्हें तनाव, चिंता और भावनात्मक उथल पुथल से निपटने में मदद करे और बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर के भय को हराना भी जरूरी है। और यह सब काम केवल आप जैसे लोग कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में योग, ध्यान और अध्यात्म की भूमिका निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और योग हमें अपने अंदर झांकने का और अपने बारे में जानने का एक बड़ा अवसर भी प्रदान करता है। मैं सभी सैनिकों से भी यह बात कहना चाहूंगा, हम अक्सर हथियारों, रणनीतियों और बुनियादी ढांचों के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं लेकिन किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है सुरक्षा करने वाले लोग, यानी कि आप। एक जागृत और सशक्त सुरक्षाकर्मी पूरे राष्ट्र के लिए प्रकाश स्तंभ बन जाता है जो किसी भी तूफान का अडिगता के साथ सामना करता है। योद्धा की ताकत केवल बाहुबल की नहीं होती है मेरे देवी और सज्जनों, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है आत्मिक बल, और आत्मिक बल उसे सबसे ताकतवर बनाता है और पूरे जग का जरूरत पड़ने पर वह विजेता बन जाता है। आप में से हर एक ने कठिन प्रशिक्षण, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां और न जाने कितने तनावपूर्ण क्षणों का सामना करना पड़ता है, पर आज जो सबसे अदृश्य और अविरल युद्ध चल रहा है वह अंदर की अशांति और अस्थिरता। और मैं जानता हूं कि सैनिक के रूप में आपको दूसरों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने भीतर के आत्मबल को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने में भी समय आप निकालें। आप केवल सीमाओं के संरक्षक नहीं हैं बल्कि देश की युवा पीढ़ी के लिए सेवा, साहस और संकल्प के आप प्रेरणा स्रोत हैं। साथियों, जब मैं सैनिकों के लिए योग और ध्यान की बात कर रहा हूं तो मैं इस पर अपनी ओर से एक दृष्टिकोण आप सबके सामने रखना चाहूंगा। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमारे सैनिक सीमा पर खड़े होकर जिस तरह से हम सबकी सुरक्षा कर रहे हैं वह कहीं भी न कहीं योग और साधना का ही एक रूप है। मुझे लगता है कि योग को किसी सीमित दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। योग का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि आप शरीर के कुछ एंगल्स पर किस एंगल पर मोड़ रहे हैं, बल्कि योग इससे कहीं आगे की चीज है। महज शारीरिक व्यायाम भर नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है। योग हमें एकाग्रचित करता है, योग हमें हमारे काम में माहिर बनाता है। हमारे सैनिक भी तो एक तरह से यही कर रहे हैं जो हम करते हैं। हमारे सैनिक भी तो सीमा पर एकाग्रचित होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योग कर्मश कौशलम, बहुत सोच समझ कर शायद यह कहा होगा उन्होंने। उन्होंने कर्म में कुशलता को योग माना है और कर्म में कुशलता हमारे सेना के जवानों में और हमारे सुरक्षा के जवानों में। इसलिए मैं एक योगी यानी साधक में और एक सैनिक में बहुत अंतर नहीं देखता हूं। मुझे कई मायने में एक साधक और सैनिक काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं। साथियों आप देखें तो आपको सैनिक और साधक पहली नजर में तो दो अलग अलग व्यक्तित्व लग सकते हैं, लेकिन जब आप बारीकी से दोनों को देखेंगे तो दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। आप एक और देखिए कि सैनिक अपनी ताकत और साहस से देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साधक अपनी आध्यात्मिक शक्ति और आत्मिक जागरूकता से देश की संस्कृति और चेतना को सुरक्षित रखता है। क्षमा कीजिएगा, समय की सीमा है इसलिए मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं, नहीं तो और मैं डिटेल में जाना चाहता था। और एक सैनिक बाहर के शत्रुओं का शमन करता है तो वहीं एक साधक अपने अंदर के शत्रुओं का भी शमन करता है। इसके अलावा आप देखिए एक सैनिक का पूरा जीवन अनुशासित होता है। एक सैनिक के जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की सेवा करना होता है, तो वहीं दूसरी तरफ ठीक यही गुण साधक में भी पाए जाते हैं। बिना कर्तव्य और अनुशासन के कोई व्यक्ति साधक नहीं बन सकता है, और साधक के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य सबसे बड़ा ध्येय मानवता की सेवा करना ही होता है। साथियों एक सैनिक और साधक में जो सबसे बड़ी समानता मुझे देखने को मिलती है वह है दोनों ही एक बेहतर सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए कार्य करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि साधक और सैनिक अलग अलग नहीं होते बल्कि दोनों एक ही होते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि एक सच्चे साधक के अंदर एक सैनिक, मैं यह मानता हूं कि एक सच्चे साधक के अंदर एक सैनिक तथा एक सैनिक के अंदर एक साधक जरूर विद्यमान रहता है। मैं अब आपको ऐसे नहीं कह रहा बल्कि आप भारत का इतिहास उठाकर देखिए तब आपको पता चलेगा जो भी भारत के बड़े बड़े योद्धा रहे हैं वह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक साधक ही रहे हैं। मैं उसका उदाहरण भी दे सकता हूं लेकिन समय अभाव कारण नहीं दे रहा हूं। हमारे इतिहास और हमारे पुराणों में आपको ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे जहां संस्कृति युद्ध और आध्यात्मिक त्रिवेणी संगम हमें देखने को मिलता है। यदि मैं भगवान राम का के उदाहरण से प्रारंभ करूं तो हम सब जानते हैं कि भगवान राम कितने बड़े योद्धा थे, लेकिन एक योद्धा के साथ साथ भगवान राम तपस्वी भी थे। सब पर राम तपस्वी राजा, यह तुलसीदास जी ने कहा है। अतः राम राजा तो थे ही, इसके साथ साथ उनके अंदर तप का गुण था। द्वापर युग में ले जाना चाहता हूं आपको। द्वापर युग में जब हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तब हम सब श्री कृष्ण सिर्फ चक्रधारी के रूप में याद नहीं करते बल्कि हम उन्हें कर्मयोग राजयोग ज्ञान योग का मार्ग दिखाने वाले तपस्वी के रूप में भगवान कृष्ण को याद करते हैं। द्वापर युग के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक अर्जुन जब धर्म युद्ध के लिए खड़े हुए तो उनका मन भी विचलित हुआ था, आप सबको जानकारी है। और जब उनका मन विचलित हुआ तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें योग का मार्ग बताया था। श्री कृष्ण ने उन्हें योगस्थ कुरुकर्मण का संदेश दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आप सही मायनों में देखिए तो एक सैनिक का जीवन यही होता है, उसे कर्म भी करना होता है और खुद को योग में स्थित भी रखना पड़ता है। देवियों और सज्जनों यदि हम भारत के प्राचीन इतिहास से अलग हटकर आगे का इतिहास देखें तो हमको ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे। मैं राजस्थान की वीर भूमि पर यहां उपस्थित हूं। राजस्थान का कण कण महाराणा प्रताप के शौर्य से वाकिफ है। देश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया लेकिन शत्रु के आगे कभी झुके नहीं। अपने स्वाभिमान के लिए अपनी मातृभूमि के लिए घास की रोटी तक खा लेना यह बिना आत्मबल के संभव नहीं होता है। एक सच्चा योगी एक सच्चा साधक एक सच्चा तपस्वी ही यह काम कर सकता है। क्रांतिकारियों के बारे में विचार करिए, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान, अंग्रेज की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हो गई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, ताकि तुम्हारी जो अंतिम इच्छा हो या संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाए। उसके मां की इच्छा बराबर थी, अशफाकुल्ला से आग्रह भी उसकी मां करती थी, बेटा शादी कर ले, तू अब बड़ा हो गया है। अशफाकुल्ला ने कहा है मजिस्ट्रेट जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है, अपनी शादी रचाने जा रहा है। कैसा आत्मबल रहा होगा। साथियों, अब युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जा रहे हैं बल्कि साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल फ्रंट पर भी युद्ध लड़े जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो गया है कि हमारे सैनिक मानसिक रूप से भी बेहद स्वस्थ हों। हमारे सैनिक सिर्फ युद्ध कौशल में ही निपुण न हों बल्कि इसके साथ साथ मानसिक स्थिरता और आत्मिक सशक्तिकरण में भी वह उतने ही निपुण हों, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं होती है, यह होती है तो चरित्र से, चेतना से और चैतन्यता से। इसके लिए आध्यात्मिकता और योग सबसे बड़ा साधन है। साथियों, मैं यहां कहना चाहूंगा कि हमारे सैनिकों के लिए आध्यात्मिकता और योग यह कोई नई बात नहीं है, यह भारत की संस्कृति में रचा बसा है। एक साधारण सा भारतीय सैनिक भी भारत की उसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिसका प्रतिनिधित्व बड़े बड़े योगियों और साधकों ने किया है। हमारे सैनिक वार क्राई में मां भवानी का नाम लेते हैं और महादेव का नाम लेते हैं, उनका उद्घोष करते हैं। हमारे सैनिक गुरुवाणी के पद गाते हैं, मां भवानी, महादेव या फिर हमारे सभी गुरु योगी के ही एक रूप हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमारे सैनिकों के लिए योग और अध्यात्म यह कोई बड़ी बात नहीं है, हमें बस थोड़े से प्लान्ड और सोफिस्टिकेटेड वे में उनके मेंटल स्ट्रेंथ के लिए काम करना होगा, जिसमें कि ब्रह्म कुमारी संस्था यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और निभा रहा है। ऐसे में यह हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। ब्रह्म कुमारी संस्था हमारे सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पूरे निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। और साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि आपका सुरक्षा सेवा विंग यानी SSW लंबे समय से हमारे जवानों और अधिकारियों को मानसिक रूप से और भी सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है। SSW ने रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स, फील्ड प्रोग्राम्स, ऑनलाइन प्रोग्राम्स, सोशल कैंपेन्स और फोर्स स्पेसिफिक प्रोजेक्ट द्वारा भारत के कोने कोने तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत बनाया है। आपके इंस्ट्रक्टर्स ने हमारी आर्म फोर्सेस की मेंटल स्ट्रेंथ के लिए जो काम किया है उसके लिए हम सब सदैव आपके ऋणी रहेंगे। और देवियों सब सज्जनों, भारत में हमेशा से हमारे संतों ने योद्धाओं को दिशा दी है और योद्धाओं ने समाज को सुरक्षा दी है। आप सभी उसी परंपरा का ही निर्वहन कर रहे हैं। वैसे तो इस संस्थान का राष्ट्र के आध्यात्मिक विकास में, इस संस्थान का राष्ट्र के आध्यात्मिक विकास में जो योगदान है उससे पूरा देश परिचित है, लेकिन मुझे देखकर बेहद खुशी होती है आपने अपना दायरा आध्यात्मिकता से भी कहीं आगे बढ़ाया है। देवियों सज्जनों, ब्रह्म कुमारी संस्था राष्ट्र सेवा और नए भारत के निर्माण की दिशा में हमेशा बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाती रही है। और मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी तब उन्होंने डॉक्टर दीदी जानकी जी मां को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। यानी आपके द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है उसको हृदय से उन्होंने मान्यता दी थी। उनके नेतृत्व में आप सभी ने व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ मानसिक परिमार्जन के लिए भी पूरे भारत में जो विशाल जन जागरण अभियान चलाया उससे समाज को एक सकारात्मक दिशा प्राप्त हुई है। साथियों, ऐसे अनेक कार्य हैं जिनके लिए निश्चित रूप से आप सबकी सराहना की जानी चाहिए। आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे मुखातिब हूं तो मेरा मन नए विश्वास से भर गया है। और यह विश्वास केवल इस संस्थान की पवित्रता से नहीं बल्कि इस विचार से यह उपजी है कि हम अपने सैनिकों को केवल शस्त्रधारी नहीं बल्कि अपने सैनिकों को ध्यानधारी भी बना सकते हैं। हम उन्हें केवल लड़ाई के लिए नहीं आत्मिक जागरण के लिए भी उन्हें तैयार कर सकते हैं। और देवियों सज्जनों, सरकार के रूप में हम भी योग को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन बिना आपके सहयोग इस संस्था के आशीर्वाद से हम उस पूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आज पूरी दुनिया योग के महत्व को स्वीकार कर रही है और इस दिशा में ब्रह्म कुमारी संस्थान का भी बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, अंत में मैं आप सभी को भी एक सुझाव देना चाहूंगा कि आर्म्ड फोर्सेज के माइंडफुलनेस के लिए आप सभी काम कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। पर आर्म्ड फोर्सेज के साथ साथ हमारे देश के प्रशासनिक व्यवस्था में गांव से राजधानियों तक अनेक सिविल सर्वेंट्स भी काम कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में काम कर रहे सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं डिफेंस सेक्टर में भी काम कर रहे सिविल सर्वेंट्स की भी मैं बात कर रहा हूं। मैं आर्म्ड फोर्सेज के हमारे सिविलियंस की बात कर रहा हूं। ये सभी हमारे व्यवस्था रूपी पक्षी के विंग्स हैं। हमारे देश के सिविल सर्वेंट पूरी मेहनत के साथ देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनको भी कई अवसरों पर अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सारे चैलेंजेस उनकी मेंटल हेल्थ को भी स्वाभाविक रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसे में अगर आप सिविल सर्वेंट और आर्म फोर्सेज के सिविलियंस पर ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि हमारे समाज और राष्ट्र की अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी यह बढ़ सकती है। फिर मेरा आपसे आग्रह है, उन तक भी आपका मार्गदर्शन पहुंचे, क्योंकि आज सिविल सर्वेंट्स डे है। सिविल सर्वेंट्स डे है इसलिए मैंने इसकी चर्चा की है, तो यह बात कहने का इससे अच्छा अवसर कुछ नहीं हो सकता था। मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे योद्धाओं के अंदर के साधकों को जगाने की कोशिश की है, जगाने का काम कर रहे हैं। आज दुनिया शांति के तलाश में भटक रही है। आज दुनिया में चारों ओर अनसर्टेनिटी का माहौल है और ऐसे में भारत का यह भारत संदेश दे सकता है सारे विश्व को कि आप अंतरात्मा की रक्षा और सीमा की सुरक्षा दोनों साथ साथ संभव है। और मुझे पूरा विश्वास है यहां जो भी आर्म्ड फोर्सेज के हमारे प्रतिनिधि उपस्थित हैं, जो भी सिक्योरिटी पर्सनल यहां आए हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, इन्हें उसका निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। और मुझे विश्वास है यहां आपको जो सकारात्मक सोच और आत्मबल का वातावरण मिला है उसे आप वापस जाकर अपनी अपनी यूनिट्स पर फॉर्मेशन में भी फैलाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां पर आमंत्रित किया। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आने का अवसर मिला। आइए हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और आत्म जागृत के इस दिव्य पथ पर अग्रसर होकर राष्ट्र की सेवा करें। इसी के साथ, इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को, जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट, सुंदर, प्रोत्साहन से भरे, आध्यात्मिक ऊर्जा से लबालब शब्दों से हमें प्रेरित किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं सर कि आपका स्वयं का व्यक्तित्व हम सबको भी प्रेरित करता है, जहां सादगी, सत्यता और दिव्यता झलकती है। एक बार पुनः जोरदार तालियां। आज मैं रक्षा मंत्री जी के सम्मुख ये कहना चाहूंगा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हमारे बीच में हैं वो इस प्रकार से बैठे हैं, और मैं निवेदन करूंगा जिन जिन का मैं नाम लूं आप कुछ सेकंड्स के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। सर्वप्रथम इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी से आए हैं इस सभा में, वो प्लीज अपने स्थान पर खड़े होंगे। भारतीय सेना, एक बार जोरदार तालियां। ये अब तक का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन है इंडियन आर्मी का SSW के इस कार्यक्रम में। अब भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, जो इंडियन नेवी से आए हैं प्लीज खड़े हो जाएं। इंडियन नेवी, थैंक यू वेरी मच। इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, हमारे ADG साहब भी स्वयं आए हैं आज बॉम्बे से। डिफेंस सिविलियंस, और विशेष जो नेवी से भी पधारे हैं डिफेंस सिविलियंस, प्लीज खड़े हो जाएं। डिफेंस सिविलियंस,
बीएसएफ जो बीएसएफ से आए हैं, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आज स्वयं हमारे बीच आईजी साहब आईएसए से पधारे हैं, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, सीजीडीए कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट से भी कई लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईसीएचएस से जो आए हैं, ईसीएचएस से जो पधारे हमारे बीच, और उसके बाद आज हमारे बीच पुलिस से भी कई लोग आए हैं, दिल्ली पुलिस, तेलंगाना पुलिस, हरियाणा पुलिस और गुजरात पुलिस। अब सबसे जोरदार तालियां हम बजाएंगे हमारे एनसीसी कैडेट्स के लिए जो आए हैं, एनसीसी कैडेट्स जो देश का भविष्य है, जो आगे आने वाले भविष्य में नेतृत्व करेंगे इस देश का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कैडेट्स को, थैंक यू। अब इस कार्यक्रम के समापन पे मैं निवेदन करूंगा राजयोगिनी बी के शुक्ला दीदी, वाइस चेयरपर्सन सिक्योरिटी सर्विसेज विंग, कि वो धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। आप पिछले 70 वर्षों से इस संस्था से जुड़ी हैं और बाल्यकाल से ही राज्यों का अभ्यास करती आई है। आप 2001 में जब इस सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की स्थापना हुई थी तो आपको नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में चुना गया था और सन 2014 में आप वाइस चेयरपर्सन के पद पे बैठी और आज के दिन तक आप हमें बहुत कुशल नेतृत्व दे रही हैं। पुनः जोरदार तालियों के साथ राजयोगिनी शुक्ला दीदी।
ओम शांति, सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम मैं सर्वोच्च शक्ति परमपिता परमात्मा, जिनको हम बड़े प्यार से बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जिन्होंने हमें श्रेष्ठ और महान जीवन जीने की सुंदर कला सिखाई है, उनका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसके साथ मैं आदरणीय भ्राता राजनाथ सिंह जी का अपनी ओर से, ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से, सुरक्षा विभाग की ओर से कोटि कोटि बार धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप इतने व्यस्त रहते हैं, उस व्यस्त जीवन से समय निकाल करके आए हैं और इस मंच की शुभ बढ़ाई है। आपका जब मैं व्याख्यान सुन रही थी तो आपके सुंदर विचार सुनकर आध्यात्मिकता की ओर आपका कितना ध्यान है ये जानकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति सर्व शक्तियों में सर्व महान है। आध्यात्मिकता हमें सत्य का बोध कराते हुए अंतर्मन की ओर ले जाती है और अंतर्मन में जो व्यर्थ जाने वाली शक्तियां हैं उससे हमें बचाती है। आध्यात्मिकता हमारे अंदर दृढ़ता पैदा करती है, इच्छा शक्ति को और भी दृढ़ करते हुए एकाग्रता लाती है, जो ही सफलता की चाबी है। तो आज भ्राता जी सुरक्षा विभाग के सिल्वर जुबली पर और उसके साथ साथ आत्म सशक्तिकरण के द्वारा राष्ट्रीय सशक्तिकरण के अभियान की शुरुआत करने और एमओयू को साइन करने के लिए पधारे, उनका मैं हृदय से बहुत आभार प्रकट करती हूँ। भ्राता जी के जो शब्दों से हम सब के अंदर एक बहुत खुशी का संचार होने लगा और साथ में एक उमंग और उत्साह का बोलबाला होने लगा कि हम लोग 25 साल से मिलजुल करके एक टीम वर्क के रूप में सद्भावना और सद्भाव जागृत करते हुए सकारात्मक चिंतन के सकारात्मक चिंतन जो आत्मशुद्धि है, अमृत के समान है, संजीवनी बुट्टी का काम करती है, उनको साथ लेकर के हजारों प्रोग्राम सुरक्षा बलों के लिए करते रहते हैं और सब जगह देश के कोने कोने में जाकर के बहुत प्यार से मिलजुल करके इस कार्य को करते हैं। और आज सोने पर सुहागे का काम हुआ कि ब्राता जी के बोल सुन करके ये लगा कि अगर आपका हम सबको सहयोग मिलेगा तो क्यों नहीं हम इस कार्य को और भी चार चांद लगा करके भारत को विश्व गुरु बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। क्योंकि हमारा भारत सारे संसार का मुकुटमणि था, परंतु आज धीरे धीरे आवागमन के चक्कर में आते आते आज ये परिस्थिति हो गई। परंतु आज अगर हम फिर अपने आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करके इस कार्य को हाथ सुरक्षा विभाग और आध्यात्मिक विभाग के सभी साथी मिलकर हाथ में हाथ मिलाकर के इस कार्य को करेंगे तो बहुत जल्दी हम भारत को के अंदर स्वर्णिम संसार लाएंगे लाएंगे लाएंगे। तो मैं ये देख रही हूँ कि हम इन सोल्जर्स की आत्मिक वृद्धि करने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल कहाँ कहाँ किन्हीं परिस्थितियों के कारण उनका मनोबल थोड़ा कम होता जा रहा है, मनोबल को बढ़ाने के लिए हम बीच बीच में कई बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते रहते हैं। और आज भी चार दिन से हमारे सैनिक विभाग के बड़े बड़े सदस्य भी और साथ साथ सोल्जर्स भी आए हुए हैं, परिवारों सहित भी कई आए हैं, तो उनका मनोबल कैसे बढ़े, अपने आप को सशक्त बना करके एक सशक्त भारत की नींव कैसे डाले और एक सशक्त सेना की नींव कैसे डाले, उसके लिए ये सारे प्रोग्राम उसमें विशेषतर ज्ञान योग धारणा और साधना के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्योंकि बिना साधना के हम अपनी आंतरिक कमजोरियों को भी नहीं जान सकते और बिना साधना के हम अपनी आंतरिक कमजोरियों को निकाल भी नहीं सकते हैं। तो अगर हम आंतरिक रीति से सशक्त हो जाएंगे तो संसार की सुरक्षा करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं ब्राता जी को यही कहना चाहूंगी कि अगर हम सोल्जर्स के अंदर आत्म समृद्धि का, श्रेष्ठ जन बनने के लिए आत्म समृद्धि का तिलक लगा देंगे, आत्मिक समृद्धि की याद पैदा कर देंगे, तो वो आत्म समृद्धि से प्राप्त पवित्रता जीवन के अंदर आएगी और पवित्रता से प्राप्त सुख शांति जीवन के अंदर आएगी, जो ही श्रेष्ठ और महान जन बनने की नींव है। तो इस नींव को जितना मजबूत किया जाएगा उतना अच्छा होगा। तो उसके लिए मैं भाई साहब का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनके साथ जो राजस्थान के बड़े बड़े नेता यहाँ पधारे हैं और राजस्थान के ऑफिसर्स ने और राजस्थान की पुलिस ने इस कार्य को सहज और सरल बनाने में बहुत सहयोग दिया, उन सब का मैं बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसके साथ साथ ब्रह्मा कुमारी संस्थान के जो हमारे युवा भाई बहन हैं, जिन्होंने एक ही दिन में इतना बड़ा कार्य की तैयारी की, उसमें शांतिवन, पांडव भवन और ज्ञान सरोवर के भाई बहनों को मिलकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज्ञान के प्रकाश में, योग के प्रसार में, कर्म के इतिहास में जीवन को निखारते चलो। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शुक्ला दीदी को इस धन्यवाद ज्ञापन के लिए। अब इसके साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है और हमारे बीच से हमारे मुख्य अतिथि हम सबसे अब विदा लेंगे। पुनः हम सब खड़े होकर अपने अपने स्थानों पे
जोरदार करतल ध्वनि द्वारा उन्हें धन्यवाद देंगे आने के लिए। श्री राजनाथ जी चेयरपर्सन SSW से मिल रहे हैं, अशोक गाबा कोऑर्डिनेटर रिटायर्ड, जिन्होंने वन मैन आर्मी के रूप में इस विंग को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया जो आज आप देख रहे हैं।